अनुक्रम अध्याय नंबर वन भूमिका, नंबर टू अंधेर नगरी इतिहास की मांग, नंबर थ्री अंधेर नगरी मूल्यांकन, नंबर फोर अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, नंबर फाइव भारतेंदु हरिश्चंद्र नव भारत के निर्माता, नंबर सिक्स भारतेंदु की विचारधारा और उनकी देन, नंबर सेवन भारतेंदु की रचनाएं यथार्थ और संघर्ष, नंबर एट भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नए चाल में ढली, नंबर नाइन नाटक, नंबर टेन अंधेर नगरी सप्ताह। रोमन नंबर वन भूमिका। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने समय के बेमिसाल साहित्यकार थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। इन्होंने युग की चेतना को सशक्त वाणी दी। इनका व्यक्तित्व उस सूर्य जैसा था जो शीत से ठिठुरते कोहरे भरे भोर में तह पर तह ढके बादलों को चीरता हुआ निकलता, जिससे पृथ्वी अपने अंधेरे भी पोंछती है और अपना बदन भी पोंछती। हास्य भारतेंदु के खून में था। वे ऐसे विनोदी थे कि राजा हो या रंक, किसी को छोड़ते नहीं थे। अंधेर नगरी उनकी अमर कृति है जो सदियों तक लोकमानस की चेतना में बसी रहेगी। इसमें अपने युग की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति पर चोट करते हुए ना तो अपनी प्रासंगिकता खोई है और ना ही इसका संदर्भ पुराना पड़ा है। आज भी यह कृति वैसे ही तरोताजा है जिस तरह प्रारंभ में थी। अपनी तदयुगीन परिस्थितियों और परिवेश के अनुरूप अपनी वैचारिकता को नाट्य शिल्प में ढाला। इनकी यह वैचारिकता और रंग शिल्प इतना लचीला और व्यंजनापूर्ण हो गया है कि वह एक सर्वकालिक रचना तथा रंग शिल्प की बहुविध संभावनाओं से संपन्न हो गया है। भारतेंदु के आविर्भाव मध्ययुगीन पौराणिकता से लिप्त पतितावस्था और नवीन ऐतिहासिक ज्ञान विज्ञान से संपन्न नवयुग की अवतारणा के संधि स्थल पर हुआ है। भारतेंदु नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भारतेंदु का जन्म भाद्र शुक्ल पंचमी संवत 1907 को हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था, जो गिरधर दास के नाम से कविता लिखते थे। संवत 1941 में 35 वर्ष की आयु में ही इस महान साहित्यकार को काल ने हमसे छीन लिया। इनकी छोटी बड़ी 175 कृतियां हैं। भारतेंदु की प्रेरणा से ही हिंदी जनभाषा बनी। भारतेंदु के साहित्य का आकलन करने हेतु आचार्य शुक्ल कहते हैं, सबसे अधिक रचना उन्होंने नाटकों की ही की, पर हिंदी साहित्य के सर्वोन्मुखी विकास की ओर भी वे बराबर दंत चित्त रहे। काश्मीर कुसुम बादशाह दर्पण आदि लिखकर वे इतिहास रचना का मार्ग दिखाए। भारतेंदु आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता तो थे ही, साथ ही हमारी समूची आर्य संस्कृति के उन्नायक हैं। यह प्रहसन भारतेंदु ने बनारस में हिंदी भाषी और कुछ बंगालियों की संस्था नेशनल थिएटर के लिए एक दिन में सन 1881 में लिखा और बनारस के दशाश्वमेध घाट पर उसी दिन अभिनीत भी हुआ। भारतेंदु इस संस्था के संरक्षक भी थे। अंत में अंधेर नगरी का मूल नाटक समीक्षा एवं शब्दार्थ के साथ तक पाठकों के सामने प्रस्तुत है। आशा है पुस्तक से विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद सिंह, प्रवक्ता हिंदी, श्री सुदृष्टि बाबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुदृष्टिपुरी, रानीगंज, बलिया। विजयादशमी 2001। पेज नंबर वन अंधेर नगरी इतिहास की मांग। अंधेर नगरी सत्य की खोज, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, समता, स्वावलंबन, राष्ट्रीयता और न्याय का फल है। यह कृति उस घुटन, उस विद्रोह से जन्मी है जो भारतीय राष्ट्रीयता स्वतंत्रता की भूमिका है। 1857 का राज विद्रोह, अंग्रेजी हुकूमत से बगावत अंधेर नगरी की पृष्ठभूमि है। मुट्ठी भर अंग्रेजों की गुलामी से देश आर्थिक, सामाजिक, नैतिक दृष्टि से खोखला होता जा रहा था। भारतीय अपनी गरिमा, अपना प्राचीन गौरव भूलते जा रहे थे और हीन भावना भय से त्रस्त हो रहे थे। उनका वर्तमान अंधकार अज्ञान, अविद्या, गरीबी से पूर्ण था। और भविष्य में प्रकाश की कोई किरण नहीं थी। सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों, पाखंड, छुआछूत, वेश्यागमन, शराबखोरी, आकर्मण्यता से देश दुर्दशा से ग्रस्त था। व्यक्ति समाज राष्ट्र में कोई तालमेल न था। व्यक्ति समाज के प्रति उत्तरदायित्व की अवहेलना करता। वर्गभेद, वर्ण भेद, अधिकार भेद से समाज की एकता समाप्त सी थी। धर्म का नैतिक जीवन से संबंध टूट चुका था, केवल पाखंड। रामकृष्ण भवानी के नाम पर धार्मिक लूट खसूट व्यभिचार। सरकार मुसलमानों को मिलाने के लिए अरबी उर्दू को बढ़ावा दे रही थी। हिंदू काफिर कहे जाते थे। हिंदी तिरस्कृत थी। योग्यता ईमानदारी की जगह चापलूसी और घूसखोरी। अंग्रेजी हुकूमत अंग्रेजों के हित के लिए, इंग्लैंड के लाभ के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए थी। विरोध विद्रोह को कुचलने के लिए पूरी हुकूमत तैयार रहती थी। अतः सामाजिक सुधार ही संभव था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक दिव्य विभूति के रूप में जन्मे और भक्ति सेवा त्याग को मान्यता मिली। स्वामी विवेकानंद इन्हीं के शिष्य थे, जिन्होंने भारतीयता और भारत गौरव का संसार भर में शंखनाद किया। एक अन्य महापुरुष स्वामी दयानंद हुए, जिन्होंने वैदिक ज्ञान के प्रसार के साथ तत्कालीन समस्त सामाजिक कुरीतियों के प्रति विद्रोह का बिगुल बजाया। स्वदेशी और स्वराज्य शब्द इन्हीं की देन है। भारतेंदु का आविर्भाव इसी युग में हुआ। वाराणसी एक ओर पंडितों, विद्वानों, संतों, साधकों की केंद्र रही, दूसरी ओर अंधविश्वासों, पाखंडों और छुआछूत की खान। स्वर्ग पहुंचने के लिए वाराणसी में मृत होना ही काफी था। संत कबीर, वैष्णव कबीर भेदभाव से जर्जरित हिंदू समाज धर्म को अभेद का मार्ग बता चुके थे। सूर तुलसी मीरा की सहज साधना ने हिंदुत्व और सनातन धर्म को आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का मार्ग दिखाया था। संतों ने आत्म सुधार के लिए स्वार्थ, अहंकार, दंभ, लोभ, मोह से मुक्ति की अनिवार्यता स्पष्ट कर दी थी। मुसलमानों के आक्रमण ने हमारी समस्त दुर्बलताओं को उजागर कर दिया कि न हम में एकता थी, न अभेद भावना और न कर्तव्य के प्रति निष्ठा। अंग्रेजों ने हमारी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक हीनता का लाभ उठाया। वे हमारे धन से अपना घर भरने लगे और अपने प्रचार प्रसार से हमें ऐसी भावना भरने लगे कि भारतीयों का न कोई गौरव है, न उज्ज्वल इतिहास, और न हम इस योग्य हैं कि स्वतंत्र हो सकें। ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ है और वही मुक्ति दे सकता है। मिशनरियों ने ऐसा प्रचार कर हमारे सारे धर्म दर्शन को नकार दिया। फलता हिंदुत्व ही खतरे में पड़ गया। अंग्रेजी जानने वालों की कद्र बढ़ी और उर्दू को राजराश्रय मिला। ये सारे विध्वंसात्मक कार्य सचेत, जागरूक, चैतन्य लोगों से न देखे गए। उन्होंने समाज को शिक्षित करने, पाखंड को निर्मूल करने, भाषा धर्म की रक्षा करने के लिए प्रयत्न करने आरंभ किए। नव चेतना के लिए पत्र पत्रिकाएं निकाली गईं, प्राचीन ग्रंथों के हिंदी अनुवाद किए गए और लोगों में भारतीयता की भावना विकसित की गई। भारत दुर्दशा साहित्यकारों से न देखी गई। निबंध, कविता, नाटक सभी माध्यमों से इसकी अभिव्यक्ति की गई। अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध व्यंग का सहारा लिया गया। प्रहसनों के द्वारा वस्तु स्थिति का चित्रण किया गया। अंधेर नगरी भारत दुर्दशा ने रंगमंच के माध्यम से एक नई चेतना को जन्म दिया। रंगमंच सामान्य जनता को शिक्षित करने का सर्वोत्तम साधन है। श्रव्य दृश्य होने से यह अत्यंत प्रभ विष्णु है। भारतेंदु अंग्रेजी नाटकों को पढ़ चुके थे। मर्चेंट ऑफ वेनिस के यथार्थ सामाजिक चित्रण से प्रभावित होकर उसका अनुवाद उन्होंने दुर्लभ बंधु वंशपुर का महाजन नाम से किया। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य से पूरा लाभ उठाया। अपने नाटकों को भारत के नाट्य शास्त्र से हटकर पाश्चात्य शैली में ढाला। उन्होंने कहा, अब नाटकों में आसी ही, पंचसंधि आदि की आवश्यकता नहीं रही। हिंदी नाटक में उल्टा फल होता है। उन्होंने कहा, अब नाटकों में आसी ही, पंचसंधि आदि की आवश्यकता नहीं रही। हिंदी नाटकों में ... उल्टा फल होता है। कथा वस्तु, चरित्र, संवाद, भाषा सबको यथार्थ और समसामयिकता से जोड़कर भारतेंदु ने नाट्य कला को नई दिशा दी। उन्होंने किसी आदर्श कथानक और चरित्र को नहीं लिया, बल्कि तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक समस्याओं को नाटक के माध्यम से चित्रित कर चेतनता और नवजागरण को पल्लवित किया, साथ ही भारत दुर्दशा से परिचित कराकर विद्रोह की नींव डाली। अतः अंधेर नगरी रूढ़िगत विनाशात्मक परंपराओं, प्रथाओं, मान्यताओं के विरोध में तथा राष्ट्रीयता, भारत प्रेम, विद्या, विवेक, न्याय के पक्ष में विद्रोह परक समस्या मूलक व्यंग रचना है। पेज नंबर 4, अंधेर नगरी का मूल्यांकन। प्रत्येक कला की कसौटी उसका समय होता है। जो कला समय के संदर्भ से कटी होती है वह ऐतिहासिक महत्व नहीं रख, इसलिए साहित्य को समाज परक माना जाता है। काल के प्रभाव से जिस प्रकार कोई व्यक्ति, कोई समाज अछूता नहीं रह सकता, उसी प्रकार न साहित्यकार समय से कटकर सर्जन कर सकता है और न कोई समय की और न कोई कृति समय की मांग को नकार सकती है। जीवन के यथार्थ का अनुभव ही कलाकार को प्रेरित करता है। आदर्शवादी क्लासिकल अथवा नीति धर्म परक अथवा मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए की गई रचनाएं भी यथार्थ से जूझने और उज्ज्वल प्रभात के लिए ही की जाती हैं। व्यक्ति समाज से भिन्न नहीं है और समाज व्यक्ति से अलग नहीं। सामाजिक कुरीतियां अथवा सामाजिक दुर्बलताएं व्यक्ति की पतोन्मुख प्रवृत्ति की ही अभिव्यक्ति हैं। अतः सामाजिक चेतना के लिए जन जन को प्रेरित किया जाता है। साहित्यकार यथार्थ को सीधे सीधे अथवा व्यंग से अथवा किसी सटायर से उजागर करता है और क्रांति के लिए भूमिका तैयार करता है। अंधेर नगरी में भारत में फैले स्वर्ग राजा के प्रति अंधश्रद्धा को निर्मूल किया गया है। राजा को पालक के रूप में नहीं, शोषक के रूप में चित्रित किया गया है। अपड़ गंवार जनता को सभी वर्ग के लोग चूसते हैं, इसलिए अंधेर नगरी में विद्या प्रसार पर बल है। जिस राज्य में योग्य व्यक्ति का समाज सेवा का आदर नहीं, जहां पक्षपात का अंधेर है, जहां का शासक वर्ग लोभी और खुशामत पसंद है, वहां न्याय कहां? राजनीति में निपुण अंग्रेज हिंदुओं की अवहेलना करके अल्पसंख्यक मुसलमानों को तरजीह दे रहे थे, उर्दू को बढ़ावा दे रहे थे, मिशनरियों द्वारा गरीब हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन देते थे और शिक्षा ऐसी जिसमें न प्राचीन भारत के गौरव का स्थान रहता और न उसकी और न उनकी वर्तमान गिरती दशा का। शिक्षा का लक्ष्य अंग्रेजी राज्य को हर प्रकार से सुरक्षित समृद्ध बनाना था। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हो। अंधेर नगरी में समाज भक्त राष्ट्र सेवी साहित्यकार हरिश्चंद्र की तड़प है। वह बेचैनी है जो विद्रोह की भूमिका है, वह असंतोष है जो नव निर्माण का आधार है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं, यही अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा का कथ्य है। राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त की भारत भारती इसी पीड़ा की देन है। जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक इसी चेतना से पूर्ण है। अंधेर नगरी भारत दुर्दशा की भांति प्रसाद का कामना नाटक लोभ विषयक वासना और भोग के प्रलोभनों का अंकन कर पाठक को नवजागरण की ओर उन्मुख करता है। युवक विलास उस पार से आया है जहाँ के मूल्य भोले भाले द्वीपवासियों के मूल्य से एकदम उल्टे हैं। विलास द्वीप की संस्कृति को नष्ट कर व्यक्ति में अहंकार, व्यक्तिवाद, संचय वासना आदि विकारों को विकसित करता है, स्वर्ग और सुरा की ओर प्रेरित करता है, पर अंत में विवेक विद्रोह करता है। भारतेंदु के नाटकों में भारत का जो गौरव है वही प्रसाद के अरुण यह मधुमय देश हमारा में चित्रित है। प्रताप नारायण मिश्र का नारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान छायावाद का प्रेरणा स्रोत रहा है। इन्हीं महान भारत के निर्माताओं से हम दास्तां से मुक्त हुए और हमारी हिंदी आज राष्ट्रभाषा पद पर है। अंधेर नगरी स्वतंत्रता संग्राम अथवा विदेशी राजा की मुक्ति से संबंधित है, अतः इसका मूल्यांकन ऐतिहासिक और यथार्थवादी दृष्टि से किया जाना। गोवर्धन दास का उद्गार अंधाधुंध मच्छा सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा, भारतेंदु की ही है। नृपति पर करारी चोट से पूरी कृति भरी है। गोद्विज श्रुति आदर नहीं होई, मानहु नृपित विधर्मी कोई, चौपट राजा से आशय अंग्रेजी राज से ही है। जहां राजा चौपट होगा वहां अंधेर नगरी होगी। चने वाले घासी राम की व्यंग्योक्ति हैं। चना हाकिम सब खाते, सब पर दूना टिक्स लगाते। हाकिम के अन्याय परक शासन का भंडाफोड़ चूरन वाले की वक्रोक्ति सरकास्म अथवा विट्स में भरपूर है। हाकिम के अन्याय परक शासन का भंडाफोड़ चूरन वाले की वक्रोक्ति सरकास्म अथवा विट से भरपूर है। चूरन अमले सब जो खावें, दूनी रिश्वत तुरत पचावें, तुरन सभी महाजन खाते। चूरन अमले सब जो खावें, दूनी रिश्वत तुरत पचावें, चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन खावें एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। हजम कर जाना का अर्थ है निगल जाना, न्याय सत्य की चिंता किए बिना सब कुछ अपना बना लेना। साहब समूचा हिंद निगल जाता है, यह है अंधेर की पराकाष्ठा। चूरन माध्यम मात्र है सारे सत्य को उजागर करने के लिए। अंधेर नगरी प्रहसन अपने पूर्ववर्ती प्रहसनों से भिन्न है। इसका लक्ष्य मात्र हंसाना मनोरंजन करना नहीं, प्रत्युत कठोर सत्य को एक आवरण के साथ प्रस्तुत करना है। यह कटु उपहास अथवा सनिंद उपालंब सरकाज्म है। इसमें अंग्रेजी हुकूमत पर कठोर आक्षेप है एक उपालंब के साथ। अंग्रेजी नगरी अंधेर नगरी विदग्ध परिहासालाप विट से भरा पूरा है। इसका कथानक, इसके चरित्र, इसके संवाद सब एक स्वर से एक ही लक्ष्य का संधान करते हैं, विदेशी राज के कारण भारत दुर्दशा। इस प्रहसन में कथानक का संयोजन, चरित्र चित्रण का वैशिष्ट ढूंढना रचना और रचनाकार के साथ अन्याय है। इस रचना के संवाद, इसकी भाषा शैली की सफलता यही है कि संपूर्ण रचना एक इकाई है और उसका प्रतिपाद्य है व्यंग्य के सहारे विदेशी राजा के अन्याय का जीवंत चित्र उपस्थित करना, ताकि नाटक का पाठक दर्शक मातृभूमि के प्रति प्रतिबद्ध होकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करें। प्रहसन का पेज नंबर 4, अंधेर नगरी का मूल्यांकन। प्रत्येक अन्वितार्थ प्रभु विष्णु है। नाटक की भाषा इतनी सहज सुबोध और परिहासपूर्ण है कि दर्शक मनोरंजन की मीठी गोली के साथ उस सत्य को ग्रहण कर लेता है जिसकी ओर नाटक का लक्ष्य है। अतः भारतेंदु के अंधेर नगरी की सफलता का मापदंड उसका कथानक नहीं, कथानक तो मात्र बहाना है, नाटककार की व्यंग्य रचना है। सारे चरित्र आम जनता के बीच के हैं, जिससे नाटककार प्रहसन को रोचक बनाने के लिए सर्वसाधारण से जोड़ता है। भारत पंडितों, राजाओं, विलासियों का नहीं, यह कबाड़ कबाब वाले का, कुंजड़े का, मछली वाले का, चूने वाले का, कसाई का, कराड़िए का और चूरन बेचने वाले का है, जो पसीना बहाकर दो रोटी पाते हैं। प्रहसन में राजा भाण विदूषक नहीं, सर्वत्र एक जीता जाता सत्य जनजीवन के बीच से उभरता दिखाई देता है। पूरा प्रहसन एक चलचित्र है, जिसमें सामान्य जनता की पिसती हुई जिंदगी की झांकी। मूर्ख राजा स्वर्ग का लोभी है, उसकी सत्य न्याय जनता की रक्षा की चिंता है। उसकी सत्य न्याय जनता की रक्षा की चिंता नहीं, वह लालची है। इस देश का धन विदेश ले जाने में वह व्यस्त है। पूरे नाटक में चौपट राजा और उससे शासित नगरी के अंधेर का अंकन है। प्रथम दृष्ट बाह्य प्रांत का, दूसरा बाजार का, तीसरा जंगल का, चौथा राजसभा का, पांचवा आरण्य का और छठा शमशान का है। शमशान प्रतीकात्मक प्रयोग है भारत दुर्दशा में। भारत कहता है, हाँ यह वह भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र, और आज हम उसी को देखते हैं कि शमशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़चित्तता, सत्य सब कहाँ गए? नाटककार ने समग्र जनजीवन के साथ चौपट राजा राजा को जोड़ा है। मूर्ख राजा, शराबी राजा का बिंब उजड़ता है। शमशान में फांसी संबंधी दृश्य हैं। पूरे नाटक की चरम सीमा यही है। स्वर्ग की कामना प्रबल है। व्यक्ति व्यक्ति में समाज की दुर्दशा के लिए किसी को चिंता नहीं है। राजा का कथन, राजा के होते और कौन वैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ। चौपट राजा और अंधेर नगरी का जीवंत रूप, यह नास की पराकाष्ठा है, नाटककार का निर्देश। कोष्ठक में राजा को लोग टिकटी पर खड़ा करते हैं, कोष्ठक बंद। साभिप्राय है, भारतेंदु आशावादी साहित्यकार थे, उन्हें भारत के अतीत पर गर्व था। उन्हें विश्वास था कि भारतवासी आलस्य की नींद से जागेगा और वह दिन आएगा जब विदेशी राज की टिकटी खड़ी की जाएगी। भारत चौपट राजा से मुक्त होकर स्वाधीन होगा, जहां धर्म नीति नहीं उसका विनाश निश्चित है। भारत दुर्दशा में भारत मरता है, पर आशा संजीवनी का काम करती है। अंधेर नगरी, जहां एक ओर अंग्रेजी हुकूमत पर व्यंग है, वहीं भारत की मूर्खता पर भी भारत दुर्दशा में भारत दुर्दैव कहता है। कहाँ गया भारत मूर्ख जिसको अब भी परमेश्वर और राजराजेश्वरी का भरोसा है।